समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
नमस्कार अलका, एंड अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल अ लवली लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड लिसनर्स, एज अलका जस्ट गेव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, द नेक्स्ट हाफ एन आवर इज गोइंग टू बी पैक्ड विद इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट। When we talk about information, yes, both national and international news, there shall be metro city updates, weather updates, and of course, information per se, as there'll be historical information,
Bilkul.
Which makes 14th of February special, memorable in its own way, and of course, there'll be some little bit music also, you know, Bilkul. To make the program musical and to ensure that our listeners enjoy today's edition of Aaj Savere. So, Alka, without much ado now, Let's begin the program with the news headlines.
समाचारों से शुरू करते हैं।
जी, the first story, listeners, Prime Minister Narendra Modi today said India and the US have decided to double the bilateral trade to $500 billion by 2030. Addressing the joint press meet after holding bilateral talks with US President Donald Trump at White House in Washington, D.C. today, Mr. Modi said, India and US will continue to advance India-US strategic partnership. He added that the cooperation and collaboration between India and America can shape a better world.
भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रेटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा।
Mr. Modi said, as strategic and trusted partners, both nations are actively moving towards joint development, joint production and transfer of technology. He said India and America have stood firmly together in the fight against terrorism and both agree that concrete action is needed to eliminate cross-border terrorism. The Prime Minister thanked the US President for his decision to extradite a criminal to India who committed genocide in 2008 in India.
फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजेलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है।
The US President said in the groundbreaking development for the US nuclear industry, India is also reforming laws to welcome US nuclear technology, which is at the highest level in the Indian market. US and India agreed to work together to help build one of the greatest trade routes, the India-Middle East-Europe Economic Corridor. Mr. Trump said, US is also paving way to ultimately provide India with F-35 stealth fighters. He said India and the US will be working together like never before to confront threat of radical Islamic terror threat across the world.
राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं।
Earlier, both the leaders held bilateral talks at the White House in Washington, D.C. U.S. President Donald Trump also gifted his book to Prime Minister Modi titled Our Journey Together, which showcased several photos from Howdy Modi and Namaste Trump events.
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर के राज्यपाल से एक रिपोर्ट मिली थी, जिस पर विचार करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है. इससे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था. संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है.
Government has spent over 29,000 crore rupees in Jammu and Kashmir in the past 5 years on development and maintenance of national highways and has constructed over 1,000 kilometers of roads in the Union Territory. Union Minister for Road, Transport and Highways, Nitin Gadkari, informed the Parliament that nearly 30,000 crore rupees has been spent on the development and maintenance of national highways across J&K and has constructed 1,003 kilometers of roads in the Union Territory during the past 5 years. The Union Minister informed the Parliament that several ambitious projects, including the four-laning of highways and construction of many tunnels, are part of this ongoing push to modernize road networks in Jammu and Kashmir.
आयकर विधेयक 2025 कल लोकसभा में पेश किया गया. इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में विधेयक पेश किया. संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने के साथ ही दोनों सदनों की बैठक 10 मार्च तक स्थगित कर दी गई है. लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के पहले चरण में 112% उपस्थिति दर्ज की गई. बजट सत्र के दूसरे चरण की बैठक 10 मार्च से शुरू होगी. सत्र का पहला चरण पिछले महीने की 31 तारीख को शुरू हुआ था. प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि कुंभवाणी स्टेशन पर महाकुंभ का प्रसारण प्रसार भारती के सटीक और विश्वसनीय सूचना प्रसारित करने के उद्देश्य को दर्शाता है. श्री सहगल ने कल संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद प्रयागराज में कुंभवाणी रेडियो स्टेशन पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही. उन्होंने इस रेडियो केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि ये महाकुंभ के लाइव और विश्वसनीय कवरेज के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है.
दूरदर्शन, आकाशवाणी और वेव्स जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से ये एक तरह का एक विश्व रिकॉर्ड होगा कि इतने डेढ़ महीने के समय में जब कुंभ का यहाँ आयोजन होता रहा है, उस दौरान हम कितने लोगों तक पहुंचे. जो मेरा मानना है वो कम से कम 75 से 100 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचे. कुंभवाणी को जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम पे हमारा रेडियो स्टेशन दिन में 4 बार खबर भी सुनाता था, जानकारी भी देता था, उसके साथ साथ जो लोग घरों में बैठे हुए थे वो जुड़े. जैसे हमारा देश अब विरासत और विकास को लेकर आगे बढ़ रहा है. सनातन का इतना बड़ा हमारी विरासत है महाकुंभ कुंभ के आयोजनों की, उसको आम जन तक पहुंचाएं, उसको उसकी महत्ता को बताएं.
श्री सहगल ने नैनी अरेल संगम सेक्टर 4 में स्थापित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो का निरीक्षण किया और प्रसारण व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने अनुमान व्यक्त किया कि आकाशवाणी, कुंभवाणी, दूरदर्शन और वेब्स ओटीटी के माध्यम से प्रसार भारती लगभग 75 करोड़ से 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा है. इस तरह के नवाचार भविष्य में भी जारी रहने चाहिए ताकि जनसंचार के माध्यम से अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सके. श्री सहगल ने कहा कि सूचना प्रसारण को निर्बाध बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए ताकि महाकुंभ की प्रत्येक महत्वपूर्ण गतिविधि को देश विदेश के श्रद्धालुओं तक सुगमता से पहुंचाया जा सके. आप गई हैं कुंभ में?
नहीं अलका, बट यू नो आकाशवाणी के इस इनिशिएटिव से हम लोग सभी महाकुंभ पर ना होकर भी हम इस यज्ञ के साथ जुड़ पा रहे हैं.
बिल्कुल, शरीर से यहाँ और मन से वहाँ. लेकिन मैं गई थी और बहुत अच्छा था, एकदम अद्भुत और कहते हैं दिव्य और भव्य कुंभ था.
सलका, आई मस्ट से यू हैव बीन रादर वेरी फॉर्चुनेट.
आप जो भी कहें, लेकिन ये है कि जब इतने लोग जुड़ते हैं
जी,
सब लोग मन से जुड़ते हैं, उसमें कोई ना व्यक्ति है, ना किसी जाति का है, किस देश का है, किस धर्म का है, कुछ भी नहीं है. बस लगता है कि मानव समुद्र है जो आस्था की डुबकी लगा रहा है.
बिल्कुल,
इस महाकुंभ में.
मूविंग ऑन फर्दर इन द न्यूज, द 23rd पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल PIFF वॉज इनॉग्रेटेड इन अ ग्रैंड सेरेमनी यस्टरडे एट द गणेश कला क्रिदा Munch. The festival, jointly organized by the Pune Film Foundation and the Maharashtra government, will conclude on February the 20th. Speaking at the inauguration function, State Cultural Affairs Minister Ashish Sheller announced that the government will set up a center of excellence for the film and entertainment industry in Mumbai's Film City. The inauguration was attended by several distinguished guests, including Vikas Kharge, Principal Secretary Cultural Affairs, Swati Mahase Patil, MD Film City, and filmmaker Shaji Karun. Celebrating the Showman is the theme of the festival, which marks the birth centenary of veteran actor Raj Kapoor.
पाकिस्तान को दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक प्रमुख देश करार दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सरकार, न्यायपालिका और समाज के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। पाकिस्तान में मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ साथ और स्वास्थ्य देखभाल सहित बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और मित्र देशों से उधार लिए गए पैसे पर टिकी हुई है।
And Uncle Alka, now let's take our listeners to the world of sports.
Bilkul.
Union Home Minister Amit Shah will participate as chief guest at the closing ceremony of the 38th National Games in Haldwani today. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the National Games at Maharana Pratap Sports College in Dehradun earlier on January 28th. At the 38th National Games, 35 sports competitions took place, out of which all medals except two were tele sports. Dehradun was the main venue of the multi-sport event. After this, most sports competitions were held in cities like Haldwani, Haridwar and Rudrapur. The closing ceremony of the National Games will begin at 2 p.m. at the International Sports Complex in Haldwani today. Apart from Amit Shah, Union Sports Minister Mansukh Mandviya, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, Meghalaya Chief Minister Kongkal Sangma, Union Minister of State for Road and Transport Ajay Tamta, Sports Minister Uttarakhand Rekha Arya, Nainital MP Ajay Bhatt, Indian Olympic Association President and MP PT Usha will be among those present.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं सरबजीत।
यस अलका, लेट्स बिगिन विद द बज फ्रॉम चेन्नई। द पुनामेला पोरूर स्ट्रेच ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल्स फेज 2 प्रोजेक्ट विल बी ऑपरेशनल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। Chief Minister Mr. M.K. Stalin has said that after inspecting the tunnelling work in Adyar, Chennai, will set new standards in connectivity and urban mobility and urge the Chennai Metro Rail Limited to expedite the work in the remaining sections of Phase 2. Chennai's first fully AC local train will be introduced soon in Chennai. This train can reach the speed of 110 kilometers per hour, ensuring a quicker and smoother ride for daily commuters. The exact ticket price is yet to be decided. The two trains will run on two key routes from Chennai to Tirumpalur, MGR Chennai Central to Arakkonam. The train features automatic sliding doors, ensuring WASI entry and exit while enhancing passenger safety. The new train comes with high-tech bogies, air suspension, wheel-mounted disc brakes and traction motors, just like the Vande Bharat Express. News now from Bengaluru, the former CEO of Ayushman Bharat, Indu Bhushan, has noted that a digital revolution in healthcare could be achieved within the next 5 years. He was speaking at a panel discussion on the future of care, revolutionizing healthcare through digital revolution, innovation and collaboration at the Global Investors Meet in Bengaluru yesterday. He pointed out that the Ayushman Bharat digital mission is yet to reach smaller cities and non-corporate healthcare facilities. However, he pointed out that with advancements in technology and artificial intelligence, all impediments in implementing the digital mission at far-flung cities will be resolved. Well, moving to Hyderabad now, tech giant Microsoft opened its new campus at Gachibowli in Hyderabad on Thursday. The new campus was inaugurated by Chief Minister Revanth Reddy along with State Minister for IT and Industries Sridhar Babu. This state-of-the-art building will house 2,500 additional employees, and the inauguration of the new campus, first being R&D largest after its US office, further consolidates Hyderabad's position as the leading global IT powerhouse. Microsoft plans to hire another 4,800 employees. On the occasion, Microsoft announced that in partnership with the government of Telangana to impart AI training to over 1.2 lakh persons in the state. And Alka, what's the buzz from Delhi, Mumbai and Kolkata?
बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली नगर निगम आयुक्त ने कल विशेष बजट बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित बजट पेश किया। बजट में शिक्षा क्षेत्र को 1,693 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,833 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही बागवानी विभाग को 393 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं, जो हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास को दर्शाता है। नए वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने सफाई का बजट 800 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है। इस साल सफाई के लिए 4,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वहीं अंतिम स्वीकृति से पहले 2024-25 के संशोधित बजट अनुमान को भी चर्चा में के लिए रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और रोहिणी सीट से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली में आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली लागू करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवा खराब चल रही है। इस विषय पर उच्च न्यायालय ने भी कई बार चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ये दोनों योजनाएं लागू करने से दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जल्द लागू की जाएगी। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कल से होने जा रहा है। एक आवाज एक राष्ट्र थीम के अंतर्गत ये कार्यक्रम 20 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये आयोजन एकता, आपसी खेल, सहयोग और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रचलित रूढ़ियों को चुनौती देने का प्रतीक है। असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन वेलफेयर के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत की खेल भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। महोत्सव के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए असम राइफल्स के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 4,500 छात्र और निजी विश्वविद्यालयों के लगभग 7,000 से 8,000 छात्र इस आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। बात कर लें सूरजकुंड मेले की, जो चल रहा है सरबजीत। फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का चल रहा है वो, और मेले में देश भर से बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना है। प्रतिवर्ष लगने वाले सूरजकुंड मेले में दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। और जल बोर्ड की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की साफ सफाई के वार्षिक कार्यक्रम के कारण कल और 17 फरवरी को राजधानी के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि जनकपुरी, विकासपुरी, वसुंधरा एनक्लेव सोसाइटी, न्यू अशोकनगर, सी एंड सीबी ब्लॉक शालीमार बाग, बीपीएस यू एंड वी ब्लॉक शालीमार बाग, बीपीएस और एसडी ब्लॉक पीतमपुरा जैसे कई क्षेत्रों में 15 तारीख यानी कल जलापूर्ति बाधित रहेगी। वहीं 17 तारीख को C4E ब्लॉक जनकपुरी, DG1 विकासपुरी, DG3 विकासपुरी, LSCE ब्लॉक विकासपुरी, पॉकेट सी, EWS फ्लैट्स मयूर विहार फेज 3, आर ब्लॉक BPS दिलशाद गार्डन, DDA फ्लैट मयूर विहार फेज 3, शालीमार बाग और CC ब्लॉक शालीमार बाग, BPS जैसे कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बात कर लें मुंबई की तो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कल कहा कि महाराष्ट्र में 9 से 10 लाख ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी मीटर हैं। उन्होंने बताया कि इस असंगठित क्षेत्र के ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी चालकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए 27 जनवरी 2025 को यानी आनंद दीघे साहब की जयंती पर धर्मवीर आनंद दीघे साहब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक रूप से स्थापना की गई। उन्होंने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन ड्राइवरों को 10,000 रूपये का एकमुश्त अनुदान देने की भी घोषणा की जो कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को इस बोर्ड के माध्यम से लाखों ड्राइवरों के लिए लागू किया जाएगा। अधिकारियों ने मुंबई में नए खुले तटीय मार्ग पर रेसिंग और वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए कल एक विशेष अभियान शुरू किया। यह कदम 8 फरवरी को दक्षिण मुंबई में तटीय सड़क पर एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की कार के पलट जाने से मौत के बाद उठाया गया है। पिछले महीने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने तटीय सड़क पर कथित तौर पर रेसिंग करने के लिए 2 लोगों के लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिए और उनकी कार को जब्त कर लिया। सरबजीत, और ये जो ध्वनि प्रदूषण है, जो नॉइस पॉल्यूशन, और गाड़ियों में जो अनावश्यक लोग हॉर्न बजाते हैं या फिर ये जो गाड़ियों की जो रेसिंग होती है, इन सब से बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि जीवन जो है वो बहुत ही अनमोल है।
यस अलका, एंड इंडीड इट इज वेरी वेरी अनोइंग, यू नो, व्हेन पीपल हॉन्क हॉर्न्स अननेसेसरली ऑन द रोड। इफ यू ट्राई एंड मेक एन एफर्ट, वी कैन डू अ मोर कंट्रोल्ड एंड अ साइलेंट ड्राइविंग टू।
बिल्कुल, क्योंकि शहरों की तो वैसे ही बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ऑफिस जाना है, टाइम से पहुंचना है, सारी चीजें हैं, उसमें ये जो शोर शराबा
नॉइज पोल्यूशन एड्स टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड एंग्जायटी, दैट्स राइट।
और बात कर लें कोलकाता की, तो साइबर अपराध नेटवर्क को एक बड़ा झटका देते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शक्ति के अंतर्गत पिछले 15 दिन में 46 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी झारखंड के कुख्यात साइबर अपराध गिरोह जामताड़ा गैंग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दक्षिण ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जानकारी दी कि झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों से 250 से अधिक साइबर शिकायतों के आधार पर डीजी साइबर अपराध अमित कुमार राठौर ने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। आज सवेरे में आप सुन रहे हैं अलका और सरबजीत के साथ, आप सुन रहे हैं, और अब समय है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात कर लें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। तो बात करें हम दिल्ली की, तो सरबजीत, जब हम लोग अभी ऑफिस आ रहे थे और जब चाय के लिए भी निकले थे तो हवा जो है वो बहुत तेज थी और ठंडी भी थी, बिल्कुल चिली विंड।
इट्स आल्सो वेरी प्लेजेंट,
लेकिन ये फरवरी का महीना तो खैर वैसे भी बहुत बसंत का महीना,
प्लेजेंट मंथ आल्सो।
बिल्कुल, ये बहुत ही बसंत का महीना है, तो वैसे ही बसंत का जो मौसम होता है अपने आप में खिला खिला, लोग भी खिल जाते हैं, चेहरे
ब्यूटीफुल फ्लावर्स आल्सो।
जी बिल्कुल, और जो हवाएं थी वो भी बड़ी सर्द हवाएं थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन बात यह है कि लौटते समय बहुत धूप हो जाती है तो गर्मी भी बढ़ जाती है। तो ये मौसम होता है जिसमें हम बहुत संभल करके रहें और
स्टिल नॉट टाइम टू शेड योर जैकेट्स।
बिल्कुल, अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। तो दिल्ली की बात करें तो दिन में तेज सतही हवाएं चलेंगी, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है और बाद में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का।
अलका, बिफोर दैट यू नो वील ऑल्सो शेयर विद आर लिसनर्स द अपडेट ऑफ वेदर फ्रॉम चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ट, द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 16 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड to have partly cloudy sky with haze. The temperatures will hover between a minimum of 19 degrees, a maximum of 36 degrees Celsius. And Alka, as you were just mentioning that it's time now to talk about, you know, 14th February, what makes it so special. So we'll also like to let our listeners know that today is International Book Giving Day. This day, you know, celebrates the power of the written word, literature and poetry, if we may say. And it also talks about the love of reading. It also encourages people to donate books, to purchase more books, and also maybe, you know, to share these books with those who maybe cannot afford them on their own.
बिल्कुल सरबजीत, और किताबों का तो ये असर होता है कि जैसे आजकल के बच्चे अक्सर माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे बस मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन माता पिता भी तो उन्हें अच्छी सी स्टोरी बुक्स जो होती है या कहानियां नहीं सुनाते हैं।
बिल्कुल,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कभी अगर आपको तनाव हो, डिप्रेशन हो, या जो युवा है, यूथ है, वो भी जब अच्छी किताबें पढ़ता है, क्योंकि जो अच्छी किताबें होती हैं वो निश्चित रूप से अच्छे मित्र की तरह होती हैं, जो आपको सलाह देती हैं, आपको उबारती हैं जब आप डूब रहे होते हैं। तो इन सबसे निकाल करके आप बिल्कुल किताब खरीदिए, पढ़िए, और अगर अच्छी लगे तो उसको उपहार के स्वरूप में भी दीजिए।
यस एब्सोल्युटली। एंड अलका, ऑन दिस डे 1556 मुगल एम्परर अकबर वॉज प्रोक्लेम्ड एज सक्सेसर ऑफ हिमायूं एट द एज ऑफ 12 इयर्स इन पंजाब, एंड अकबर इनकरेज्ड आर्ट, कल्चर एंड रिलीजियस टॉलरेंस।
बिल्कुल, और 1663 की बात करें तो कनाडा फ्रांस का एक प्रांत बना था।
1881 on this day, Rajendra Lal Datta and M.M. Basu established the first homeopathic medical college and hospital in Calcutta.
1899 की बात करें तो अमेरिकी कांग्रेस ने संघीय चुनाव में वोटिंग मशीन के उपयोग को स्वीकृति दी थी।
1901 ऑन दिस डे किंग एडवर्ड द सेवेंथ ओपन्ड हिज फर्स्ट पार्लियामेंट।
1893 की बात करें तो हवाई द्वीप अमेरिका का हिस्सा बना था। 1912 में इंग्लैंड में पहली बार डीजल इंजन वाली पनडुब्बी का जलावतरण किया गया था। 1920 में शिकागो में महिला मतदाता लीग की स्थापना की गई थी। वहीं 1945 में पेरू, पैराग्वे, चिली और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने थे। 1972 में अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की थी।
And time now, listeners, to pay tributes to the persons who have their death anniversaries or their birth anniversaries on today, that is 14th of February. We begin this section by paying tributes to Akamma Cherian. Today is her birth anniversary. She was an independence activist from Travancore, India. She was popularly known as the Jhansi Rani of Travancore. And in February 1938, the Travancore State Congress was formed and Cherian gave up her teaching career to join the struggle for liberty.
और आज हम याद कर रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सफल संपादक, संस्कृत के विद्वान और जाने माने भाषाविद विद्यानिवास मिश्र को। साहित्यिक आलोचकों के अनुसार संस्कृत मर्मज्ञ मिश्र जी ने हिंदी में सदैव क्षेत्रीय बोलियों को शब्दों को महत्व दिया। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार यदि हिंदी में क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों को बढ़ावा दिया जाए तो कठिन राजभाषा से बचा जा सकता है जो अत्यंत संस्कृत निष्ठ है। मिश्र की ललित निबंध परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के साथ मिलकर एक त्रयी रचते थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद अगर कोई हिंदी साहित्यकार ललित निबंधों को वांछित ऊंचाइयों पर ले गया तो हिंदी जगत में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का उल्लेख किया जाता है। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो विद्यानिवास मिश्र को हिंदी और अंग्रेजी में 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Next on our list is Lakshmi Pillai. Today is his birth anniversary, an Indian composer and writer of Malayalam literature, known to be in fact the first female poet and composer of Kerala. Na na
na na na. आज हम याद कर रहे हैं दिलकश, चुलबुली, संजीदा और हसीन मुमताज जहां देहलवी को, जिन्हें रुपहला पर्दा मधुबाला के रूप में जानता है। आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 1933 को उनका जन्म हुआ था।
क्या ख्याल है आपका,
तुम तो मचल गए हो,
यूं ही फिसल गए आ आ आ।
हाल कैसा है जनाब का,
खजी में हारी चलो मान जाओ ना,
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
अच्छा जी में हारी चलो मान जाओ
पर देते मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। एक पर देते मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया।
Yes, indeed, Alka, very, very musical, awesome collection. We're also remembering today Douglas Lars Fairs. He was an American musician, singer and songwriter. Listeners, time to wind up the show.
और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हम अपने श्रोताओं से अनुमति लें, तो अलका सिंह और सरबजीत कौर को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
Yes, listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15 AM. Thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.